के, तो पुरुष तनधारी तो कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता ना। निमित्त मीडिया, दादा लिखराज ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया, सेकेंडरी, तो जरूर कोई ब्रह्मा के रूप में नारी रूप है, जैसा अर्थ है वैसा शब्द है। ब्रह्मा न बड़ी माँ, मा न माँ बड़ी माँ, जिसकी कोई भी माँ हो नहीं सकती। माने कोई माता उसको ज्ञान सुनाने में कन्विंस कर नहीं सकती। पिता होगा, ब्रह्मा का भी कोई पिता हो सकता है, रचयिता हो सकता है, लेकिन उस माता को कन्विंस करने वाली कोई माता नहीं हो सकती, माने उससे बड़ी माता नहीं हो सकती। वो सारे जगत की माता है। उस माता के अंदर जब ये संकल्प उठे कि अब तो स्वर्ग का गेट खुल जाए, अब ये नरक की दुनिया क्या हो जाए, खलास हो जाए, माने अब इसमें कोई प्रयोजन नहीं रहा, इच्छा मात्रम अविद्या। कौन सी दुनिया के लिए इच्छा मात्र अविद्या? स्वर्ग का गेट खुल जाए ये इच्छा नहीं है क्या? स्वर्ग का गेट खुलना ये तो नई दुनिया की इच्छा हुई, लेकिन कौन सी दुनिया के लिए बोला इच्छा मात्र अविद्या? ये पुरानी दुनिया जो भस्म होने वाली है, इस तो दुनिया में अभी हमें कुछ भी सुख नहीं चाहिए। अब पूरा वैराग्य आ गया क्या? माताओं के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ बाबा ने कौन सा बताया है? नष्टो मोहा। माताएं अगर नष्टो मोहा हो जाएं, तो समझो उनका पुरुषार्थ पूरा हुआ, पास हो गई। तो माताओं में मुख्य माता ब्रह्मा, जगदम्बा, उनके लिए ये गायन है। क्या गायन है? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते। तो बाप पहले मां को आगे बढ़ाएगा, अब खुद आगे बढ़ेगा। पहले वैराग्य, इंतहा वैराग्य, एवरलास्टिंग, वो किसके अंदर पैदा करेगा? हैं? मां के अंदर। मां के अंदर जब ये वैराग्य का भाव पक्का पैदा हो जाए, अभी कुछ नहीं चाहिए। सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कोई माता है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है? मुरलियों में नाम दिया हुआ है, कौन? कामधेनु। तो कामधेनु गाय है जिसके शरीर में सारे ही 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं। उसके अंदर ये संकल्प उठे बुद्ध रूपी पेट में क्या, कि अब इस पुरानी दुनिया का भले विनाश हो, विनाश तो कब होगा? पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? हैं? पहले तो स्थापना चाहिए। स्थापना जब तक नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा का पहला कार्य है स्वर्ग का गेट खुले। वो गेट तब ही खुल सकता है जबकि ब्रह्मा के अंदर संपूर्ण वैराग पैदा हो जाए। वो वैराग्य की तरफ इशारा किया, ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अच्छा, ब्रह्मा के संकल्प से तो गेट खुलेगा। अब शंकर कौन? ये तो गेट का उद्घाटन वो तो ब्रह्मा के द्वारा हो गया, होना है, वो तो पहला कार्य। फिर उस स्वर्ग की, पैराडाइज की प्रत्यक्षता संसार में कब होगी? जब विनाश के नगाड़े बजे। तो शंकर कौन? यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन? ब्रह्मा तो संपन्न स्टेज में पहुंचेगा तो विष्णु रूप बन जाएगा। चार भुजाधारी, चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन, चार भुजा माने चार मददगार आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा पार्वती, इन चारों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन। माना वो स्वर्ग का कि एक गेट खुल गया, लेकिन उसकी प्रत्यक्षता तब होती है जब के विनाश की नगारी बजे। तो शंकर कौन? ये गुहे रहस्य है कि ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन है, इस पर रूह रेहान करना। माना पक्का पक्का ये विश्वास निश्चय धारण कर लेना है, ये तीनों मूर्तियों का पार्ट कौन कौन सा है, नहीं तो त्रिमूर्ति शिव की पूरी पहचान नहीं हुई। अगला वक्त, ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु के भी 84 जन्म कहेंगे। जब ब्रह्मा तो विष्णु है तो ब्रह्मा के भी 84 जन्म, तो मृत्यु कितनी होगी? 84 जन्म होंगे तो मृत्यु कितनी हुई? हैं? 84 मृत्यु, 84 जन्म तो 84 बार मृत्यु भी, लेकिन जन्म गाया हुआ है। ब्रह्मा के 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म कहेंगे, शंकर के थोड़े 84 जन्म होते हैं। अच्छा, ये कब की बात है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन से युग में होते हैं? संगम युग में होते हैं। तो संगम युग में स्थूल जन्मों की बात होगी या सूक्ष्म जन्मों की बात होगी? जो जन्म मरण का चक्र फिरेगा संगम युग में, वो स्थूल जन्म से कनेक्टेड है 84 का चक्र, या शूटिंग पीरियड से सूक्ष्म बात से कनेक्शन रखता है? वो तो सूक्ष्म बात का कनेक्शन। माना शंकर को अटल अखंड स्टेज में जो दिखाया जाता है वो स्वरूप ये साबित करता है कि उसकी जन्म मृत्यु होने का सवाल नहीं है। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। शिव की भी ऐसी ही स्टेज और शंकर की भी ऐसी स्टेज कि एक बार निश्चय पैदा हो गया कि ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, तो वो निश्चय को कोई टालने वाला नहीं हो सकता। अखंड और अडोल निश्चय है। निश्चय टूटा बाप के रूप का, तो जैसे कि बच्चा मर गया, और निश्चय मजबूत हुआ, निश्चय पक्का हुआ, माना पक्का ब्राह्मण बन गया, जन्म ले लिया। तो निश्चय होना माना जन्म होना, अनिश्चय होना माना मृत्यु होना। ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो ब्रह्मा को चलता है लेकिन शंकर को नहीं चल सकता। ब्रह्मा के 84 जन्म होंगे, विष्णु के भी 84 जन्म होंगे, माना उतरती चढ़ती कला किसकी होगी? जो भी ब्रह्मा या विष्णु के पार्टधारी हैं, जो भी मूर्तियां हैं, उनके होंगे। वो अप एंड डाउन की स्टेज में आ सकते हैं लेकिन शंकर नहीं आ सकता। शंकर के थोड़े 84 जन्म होते हैं। जो उनको गुरु की दरकार हो, गुरु किस लिए, गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु करने का मकसद क्या होता है? गति, सदगति प्राप्त करना। तो पहली गति सदगति मन बुद्धि की होगी या शरीर से हो जाएगी? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थिरियम बने, चाहे जैसी स्थिति आए, चाहे जैसी परिस्थिति आए, चाहे जैसी समस्याएं आए, वो गुरु से ऐसी पढ़ाई पढ़े जो दुख का अनुभव न करे, सुख का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। सुख शांति स्वरूप आत्मा होगी तो दूसरों को भी सुख शांति का अनुभव करा सकेगी, खुद ही नहीं होगी तो दूसरों को भी हड़कंप पैदा करेगी, दूसरों को भी उद्वेग पैदा करेगी, अशांति पैदा करेगी और खुद भी अशांत होती रहेगी। खुद भी हिलेंगे और साथ साथ जो दूसरे संगी साथी होंगे वो भी उस वाइब्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए बोला शंकर के थोड़े ही 84 जन्म होते हैं, जो उनको गुरु की दरकार रहे, माने उनको कोई रास्ता बताए शंकर को कि गति सदगति कैसे होनी, आत्मा गतिशील कैसे हो, ठहरती कला से चलती कला, चलती कला से उड़ती कला कैसे हो, इसके लिए उनको कोई गुरु की दरकार नहीं है। दरकार किनको है? ब्रह्मा को और विष्णु को दरकार है। उनको कोई दरकार नहीं, सिर्फ ब्रह्मा का ही गुरु ठहरा, उनकी सदगति होती है। क्या? ब्रह्मा का ही गुरु ठहरा, उनकी सदगति होती है। या भी उनकी कह के दूर कर दिया ब्रह्मा को। क्यों? ब्रह्मा के तन में बाजू में ही बैठा हुआ था, फिर दूर क्यों कर दिया? माना भविष्य का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट ब्रह्मा का, इन ब्रह्मा को ही जगदम्बा कहेंगे। मुरली में क्यों बोला? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। क्यों कहा? क्योंकि वो ही ब्रह्मा की सोल कोई माता में प्रवेश करती है और संसार में जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। ब्रह्मा के रूप की पूजा नहीं है पुरुष रूप की, पूजा किसकी है? जगदम्बा के रूप की पूजा है। मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, मान्यता होती है तो उनकी सदगति होती है। किनकी? ब्रह्मा की। तो सदगति होती है, माना पहले क्या थी, पार्वती कहो या ब्रह्मा कहो, दोनों पहले किस स्टेज में थे? सदगति की स्टेज में कहें या दुर्गति की स्टेज में? कहते पार्वती को कथा सुनाई, पहले दुर्गति की स्टेज में थे, फिर जब कथा सुनी, गुरु से डायरेक्शन लिया, गुरु के मत पर चले तो सदगति हुई। तो ब्रह्मा और विष्णु की सदगति होती है, उनकी सदगति होती है तो जाकर के विष्णु बन जाते हैं। विष्णु तो सदगति स्वरूप ही है, ब्रह्मा का अधूरा रूप है। अगला वक्त, जो जो मैंने काम किए हैं वह नाम रख दिए हैं। है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें उनके ढेर सारे चरित्र दिखाए हुए हैं? है? आजकल सीरियल कौन सा चल रहा है टीवी में? शिव महापुराण और है? ओम नमो शिवाय। तो जो जो मैंने काम किए हैं भक्ति मार्ग में वो मेरे काम के आधार पर मेरे नाम रख दिए। कहते हैं हर हर महादेव। एक तो देव कैसा? महादेव, छोटा मोटा देव नहीं, देवताओं में सबसे बड़ा देव, देव महादेव कहते हैं, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उनसे भी ऊपर महादेव। और किस आधार पर बना? हर हर, हरण कर लेता है पापों का, उसके बगैर पापों का हरण हो नहीं सकता, सभी के दुख काटने वाला है, लेकिन वह भी मैं ही हूं। क्या? दुखों का हरण करने का काम भी मैं करता हूं, मैं माने कौन? सिर्फ ज्योति बिंदु ही उसमें प्रवेश करके वो दुखों को काटने का काम करता है, शंकर नहीं। शंकर भी मेरी प्रेरणा से सर्विस पर हाजिर है। हाजिर है या सूक्ष्म बतन में? हाजिर है मेरी प्रेरणा से, मैंने उसको प्रेरणा दी है। अरे मुरली में तो कहते हैं मैं प्रेरणा से कोई काम नहीं करता हूं, मैं प्रेरणा देता ही नहीं, फिर यहां क्यों बोला मेरी प्रेरणा से हाजिर है? हाजिर नाजिर किसे कहा जाता है? सम्मुख होने, कोई साकार रूप से होने, कोई हाजिर नाजिर कहा जाता है? नाजिर मारने नजर से देखना, नजर से दिखाई पड़े तो नाजिर। तो वो मेरी प्रेरणा से हाजिर है, माना ये प्रेरणा का कार्य जो है वो सामान्य किसी और दूसरी आत्माओं को डायरेक्ट सेवा नहीं देते क्या? वो सिर्फ एक ही सोल का कार्य है जो डायरेक्ट शिव ज्योति बिंदु की प्रेरणा को पकड़ पाता है। इसका क्या प्रूफ? इसका प्रूफ क्या है कि वो एक ही पकड़ पाता है, दूसरा नहीं पकड़ पाता है? कैसे माने? 100% याद? ये कोई प्रूफ नहीं है, ये याद तो देखी नहीं जा सकती, ये तो गुप्त चीज है। है क्या? जोर से बोलो। खुद फुल बैगर बनता है, फुल बैगर तो 108 जो भी है वो सब फुल बैगर जब तक नहीं बनेंगे तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बनेंगे, वो तो सभी का। हाँ हाँ, उस जो शिव ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान की गहराई को, उसके क्लैरिफिकेशन को, उसके मनन चिंतन मंथन को, उसकी तह को कोई मनुष्य आत्मा पकड़ नहीं सकती। वो शिव का जो टीचर का रूप है एक्सप्लेनेशन देने का, वो टीचर का रूप शंकर का ही है, और किसी मनुष्य आत्मा का नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि शिव जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी समझाना चाहते हैं, वो समझने वाला पहला बच्चा कौन? जिसके द्वारा सब समझते हैं। क्या वो एक ही रूप है जिसके लिए गायन है कि गंगा लाई? गंगा आई तो, लेकिन जटाओं में उलझ गई, तो जटाओं में कोई गंगा थोड़ी उलझ जाती है। ये तो मन मस्तिष्क में ज्ञान रमण करता है, उसको कहा जाता है, उस बुद्धि में वो बात बैठी हुई है, और किसी को पता नहीं है। 96 से लेकर के और 76 तक वो बात एडवांस नॉलेज की और किसी की बुद्धि में नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण बन जाए, लक्ष्य को प्राप्त कर ले, कोई भल कहे कि 56 से लक्ष्मी नारायण तैयार हो गए या प्रत्यक्ष हो गए? नहीं, लक्ष्मी नारायण तो पद प्राप्त हो ही तब सकता है जब मनन चिंतन मंथन की फुल स्टेज हो जाए, आत्मा के 84 जन्मों का क्लैरिफिकेशन हो, निश्चय बुद्धि हो जाए। तो प्रेरणा लेने का कार्य डायरेक्ट शिव से सिर्फ एक सोल का है, वो सोल ही परमात्मा बाप की बताई हुई गहराई की बातों को पूरा समझ सकती है और वही कार्य में ला सकती है। वही बाप टीचर सदगुरु का रूप बन सकती है, दूसरी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। ब्रह्मा को तो बेबी बुद्धि बोला है, जो ब्रह्मा को वो बेबी बुद्धि बोला है, बच्चा बुद्धि, वो मुरली की गहराइयों को पकड़ सकता है क्या? नहीं। पकड़ा होता तो विनाश की बात का उल्टा अर्थ निकाल करके बाहर की दुनिया में उस बात को नहीं फैलाया जाता कि 76 में दुनिया का विनाश, बाहर की दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो असली बात जो है वो एक ही आत्मा की बुद्धि में बैठती है और वही सारी बात को क्लेरिफाई करती है, वही टीचर का परम टीचर, परम सदगुरु, परम बाप का पाठ बजाने वाला स्वरूप है। इसलिए बोला ये दो बातें भिन्न हो जाती हैं। इसलिए कहने लगते हैं बाबा तो डबल डबल बातें करने लगते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मैं प्रेरणा देता ही नहीं हूं। प्रेरणा से अगर मैं पढ़ाई पढ़ाऊं तो फिर मुझे षष्ठी पर आने की दरकार क्या है, फिर तो मैं ऊपर बैठे ही प्रेरणा देता हूं, षष्ठी सुधर जाए। नहीं, प्रेरणा कहो, प्रवेशता कहो, क्योंकि उसका पता नहीं चलता कब बुद्धि रूपी क्षेत्र में वो प्रवेश करता है, कब चला जाता है, पता लगता है क्या? नहीं? फिर प्रवेश करने के भी कारण अलग अलग है। प्रवेश तो 108 में भी होता है, सेवा कौन करता है? मनुष्य आत्माएं सेवा करती हैं जो तमो प्रधान बनी पड़ी है, या बाप दादा की स्वयं आत्मा प्रवेश करके सेवा करती है? सेवा का कार्य कौन करता है? मनुष्य आत्माएं समझ लेती हैं हम सेवा करते हैं, तमो प्रधान आत्मा सेवा का कार्य नहीं कर सकती। वास्तव में सुप्रीम सोल शिव ही आकर के प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश उनमें करता है जो हिम्मत करता है। परंतु कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है तो जैसे वो भूत है, वो खुद भी भूत है और दूसरों को भी भूत बनाएगा, कहने की बात ही नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान कभी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेगा। क्या नियम है? सन सोज फादर, फादर सोज सन। वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके बच्चों को, बच्चों के पार्ट को प्रत्यक्ष करता है, और बच्चे जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो शंकर भी मेरी प्रेरणा से सर्विस पर हाजिर है, और ब्रह्मा भी मेरी प्रेरणा से सर्विस पर हाजिर है, लेकिन अंतर क्या है? माना तीन मूर्तियों में दो मूर्तियां हैं जिनमें वो प्रवेश करता है, एक में टेम्परेरी रूप में और एक में एवरलास्टिंग रूप में। जब तक सृष्टि का परिवर्तन पूरा न हो जाए तब तक आदि सो अंत। बाप ने समझाया है, शंकर का इतना पार्ट नहीं है, पार्ट भी है नहीं, इतना पार्ट नहीं है, वह नेक्स्ट टू शिव है। क्या बोला आगे? तो पार्ट भी है नहीं, फिर भी नेक्स्ट टू शिव है। क्या बात हुई? कुछ करे धरे भी नहीं, और शिव बाबा के बाद नंबर भी ले ले, ये कैसे हो सकता है? अरे जो करेगा सो भरेगा, जो जितना करेगा वो उतना भरेगा, करना धरना कुछ नहीं और प्राप्ति पूरी कर ले, ये कैसे हो सकता है? ये तो वंडरफुल बात हो गई। किस आधार पर है? कोई आधार तो होगा ना। अरे इस वंडरफुल बात का भी कोई आधार होगा कि नहीं होगा? हाँ, जानते हैं योग बल से विश्व की बात चाहिए, ऐसे नहीं कहा धारणा के बल से विश्व की बात चाहिए। वो देवता ही धारणा नहीं दिखाता है संसार में,
वो बाप का पार्ट है। सबसे जास्ती ग्लानी ब्रह्मा की होती है या विष्णु की हुई है शास्त्रों में या बाप की हुई है? बाप की सबसे जास्ती ग्लानी, उसके बाद नंबर दो की ग्लानी होती है ब्रह्मा की। तो जिसकी ग्लानी होती है वो ग्लानी की परवाह नहीं करता, जैसे कि उसके कान ही नहीं, जैसे कि उसको आंख ही नहीं है, इंद्रियां है ही नहीं, होते हुए भी जैसे ना होती हुई, तो उसको लिंग बनाई दिया। माना कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करता, पार्ट ही नहीं, पार्ट कर्मेंद्रिय से बजाया जाता है या मन से बजाया जाता है, रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट किस आधार पर चलता है? कर्मेंद्रियों के हलन चलन के आधार पर पार्ट प्ले होता है ना, लेकिन वो ऐसा पार्टधारी है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट जैसे बजाता ही, इसलिए लिंग रूप में दिखाया हुआ है, मंदिरों में यादगार है सिर्फ उस रूप की, बाकी किसी रूप की यादगार नहीं। शंकर की यादगार है शंकर के चित्र की, लेकिन मंदिरों में शिवलिंग को ही बीच में दिखाया जाता है
मंदिर, और उसमें सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, छोटे बड़े देवताओं की, और उसमें महादेव की भी मूर्ति रखी हुई है, तो मुख्य पाठकारी कौन हुआ? वो बीच वाला शिवलिंग जो दिखाया गया निराकार, वो हुआ या शंकर हुआ? शंकर का इतना पार्ट ही नहीं है। कर्मेंद्रियां दिखाई जरूर गई हैं, लेकिन उसका पार्ट पार्ट कहा इतना नहीं। फिर भी नेक्स्ट टू शिव है, तो आधार क्या हुआ नेक्स्ट टू शिव होने का? एक बाप दूसरा न कोई। अगर ऐसी अभिविचारी याद की स्टेज है जिसमें और किसी का कोई लगाव साबित न हो, तो वो विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेता है। हिटलर हो, नेपोलियन हो, बड़े से बड़ा दुनिया का सम्राट कोई क्यों न रहा हो, लेकिन सारे विश्व के ऊपर कोई राजा ही प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि कुछ न कुछ देह अभिमान रहा, बाहुबल रहा, वो बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त की जा सकती, वो सिर्फ योग बल ही है, जिसके लिए एक शंकर के लिए गायन है, योग बल से सारे विश्व की बादशाही प्राप्त की। लक्ष्मी नारायण के लिए गायन है सारे विश्व के ऊपर बादशाही का, लक्ष्मी नारायण का भी गायन नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी राज्य करेंगे तो कहां करेंगे? 500 करोड़ के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर, या सिर्फ स्वर्ग में? तो स्वर्ग में उनकी राजा ही होगी। 108 श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर दिखाया गया जो दिव्य गुण धारण करती है, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिल और दिमाग पर चढ़ जाए, वो सिर्फ एक ही रूप गाया हुआ है। दूसरे धर्म के लोग भी एडम ईव को मानते हैं, आदम हवा को मानते हैं, आदिनाथ आदिनाथनी को मानते हैं, जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं। तो बोला अगली बात, वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, क्या ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है, शंकर का तो पार्ट जैसे है ही नहीं, इतना पार्ट नहीं है शंकर का, कोई पार्ट नहीं, ऐसे बोला। लेकिन सबसे जाति पार्ट कौन बजाता है? शिव बाबा। शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, देखने के लिए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखने के लिए आंखें चाहिए, फिर पढ़ाई सिर्फ मुख से ही पढ़ाई जाती है, थ्योरी की ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है या प्रैक्टिकल भी पढ़ाई जाती है? टीचर सिर्फ मुख की पढ़ाई पढ़ाता है या प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है? प्रैक्टिकल भी तो पढ़ाता है, तो प्रैक्टिकल भी कर्म करके दिखाते हैं। शंकर क्या करते हैं? माना पढ़ाई पढ़ाने का एक्सप्लेनेशन देने का पार्ट किसका हुआ?
शिव का है, शंकर नहीं करता ये धंधा, फिर भी उनका पार्ट वंडरफुल है। किनका? शंकर का पार्ट वंडरफुल है, जो तुम विश्वास कर न सको, तुम विश्वास कर न सको। ये किसके लिए बोला? मैंने बच्चों के लिए बोल दिया पहले से कि तुमको उस पार्ट के ऊपर जरूर संशय आता रहेगा, कोई को कम संशय आएगा, कोई को ज्यादा संशय आएगा। वो ऐसा वंडरफुल पार्ट है, कम संशय किनको आएगा और ज्यादा संशय किनको आएगा है? कम संशय उनको आएगा जो हीरो पार्टधारी के 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहे होंगे, कभी धोखा नहीं दिया होगा। और ज्यादा संशय किनको आएगा? जो बाप से विपरीत बुद्धि होकर के दूर हो गए होंगे, दूसरे दूसरे ग्रुप्स में, दूसरे दूसरे धर्मों में तैर गए होंगे, बाप को धोखा दिया होगा, आज से अंत तक पूरे सहयोगी नहीं बने होंगे, उनको संशय आ गया। और शूटिंग कहां होगी है? इन दोनों बातों की शूटिंग भी प्रैक्टिकल में यहां देखी जा सकती है। अगला वाक्य, धर्मराज भी क्रिएशन है क्या? क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर एक है क्या? बाप अलग और धर्मराज अलग, कौन हुआ धर्मराज? धर्मराज माना क्या? धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ये पार्ट किसने बजाया है? शंकर ने बजाया है, ब्रह्मा ने बजाया। ब्रह्मा की सोल ही पार्ट बजाती है धर्मराज का पार्ट, लेकिन ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। जब तक रहे कभी उन्होंने धर्मराज का पार्ट बजाया क्या? किसी को आंख उठा करके भी लाल आंख से देखा क्या है? पच्छड़ माली क्यों ना एक सेकंड के लिए बाबा के पास पहुंचा हो, वो भी कहता बाबा ने हमको जिंदगी में जितना प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का कोई भी ऐसा मिसाल हो सकता है जो ये बताए कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया? तो प्यार महसूस किया मां का? कोई कह नहीं सकता तो प्यार नहीं दिया, तो धर्मराज का पार्ट हुआ क्या वो है? नहीं, फिर ने जरी छोड़ दिया, फिर कैसे साबित हो? जरूर वो ब्रह्मा की सोल ही कोई कोई माता में प्रवेश करती है, इसलिए बोला हुआ है असुर संहारिणी गाई हुई है। कौन गाई हुई है? असुरों का संहार करने वाली, वो देवी का रूप है, विकराल रूप, जो असुरों के चेहरे प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनी हुई। तो वो धर्मराज का जो रूप है असुर संहारिणी, वो क्रिएशन है या क्रिएटर है? वो भी क्रिएशन। धर्मराज है मेरा राइट हैंड, पर राइट हैंड माताओं को बताया या पुरुषों को बताया? माताओं को बताया। धर्मराज भी क्रिएशन है, और फिर आगे क्या बोला? यादवों का हेड है शंकर। धर्मराज क्रिएशन है और यादवों का हेड है शंकर। महाभारत में, भागवत में यादवों का हेड किसको दिखाया है? कृष्ण को, कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया है। और यहां बाबा साबित ये कहते हैं कृष्ण भगवान है ही नहीं। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो बच्चा है, रचना है। वो तो ऐसा पार्ट बजाता है जिसमें कौरव और कीचक सब मात खा जाते। वो रचना है, वंडरफुल रचना है, बाकी वो भी रचयता नहीं है। रचयता बाप का जो रूप है उसके लिए क्या बोला है? बोला यादवों का हेड है शंकर। यादवों का हेड क्यों? पांडवों का हेड क्यों नहीं बताया है? पांडवों को चलाने वाला कौन था? पांडवों को कौन चलाता था? कृष्ण चलाता था। और यादवों का हेड कौन था? कृष्ण। तो शास्त्रों ने दोनों को एक दिखा दिया है। मुरली में भी बोला है नेक्स्ट टू शिव है शंकर, फिर दूसरी मुरली बोला नेक्स्ट टू शिव है कृष्ण, तीसरी मुरली में बोला नेक्स्ट टू शिव है प्रजापिता, चौथी मुरली में बोला नेक्स्ट टू शिव है लक्ष्मी नारायण। तो कौन हुआ? ये चार है नेक्स्ट टू शिव या एक है? जरूर पर्सनालिटी तो एक ही है, और चारों नाम अलग अलग रूप से दिखाई दिए। जब जब जैसा जैसा काम वैसा वैसा नाम। अगला वाक्य है यहां फिर शिरोमणि शिव बाबा। मणियों में शिरोमणि कौन? शिव बाबा। कितनी मणि है? अरे कितनी मणियां गाई हुई हैं? है? 9 मणियां तो मुख्य गाई हुई हैं, लेकिन शिरोमणि शिव बाबा। क्या बात है? मणियों के साथ है शिरोमणि माना श्रेष्ठ मणि। शिव बाबा गिनती में आता है? शिव गिनती में आता है नवरत्न की गिनती में? मणि चैतन्य है या पत्थर होती है? मणि तो पत्थर होती है। जो 9 मणियां 9 रत्न हैं, उनकी भेंट पत्थर से क्यों की गई? पत्थरों से उनकी भेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो 9 मणियां जो हैं, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी बनती हैं और पत्थर बुद्धि भी बनती हैं। इसलिए उनकी गिनती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट। ये शिव के लिए नहीं कह सकते। फिर यहां क्यों कहा? यहां फिर शिरोमणि शिव बाबा क्यों कहा? बाबा शब्द भी तो जोड़ा हुआ है। शिव बाप थोड़े ही बोला, माना साकार की तरफ इशारा किया। शिरोमणि शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर नंबर वार माला यहां की है। शंकर तो न वर्षा लेते हैं और न वर्षा देते हैं, माना शंकर को सुख लेने की भी दरकार नहीं और शंकर को शांति का वर्षा लेने की भी दरकार नहीं, माना जो है ही उस स्वरूप में स्थित उसको लेने की दरकार होगी? शंकर को पतित बताया है क्या? जब पतित है ही नहीं, है ही पावन। मन बुद्धि जब स्थिरियम है, अंदर से इच्छा है ही नहीं, सिर्फ निमित्त मात्र पार्ट बजाना है विश्व कल्याण की अर्थ, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो वर्षा लेने का लालायक है? अच्छा फिर इसका प्रूफ क्या है? इस बात का क्या प्रूफ है? प्रूफ होना चाहिए ना, बिना प्रूफ के तो कोई नहीं मानेगा। इस बात का क्या प्रूफ है कि शंकर वर्षा नहीं लेता है? हाँ, सब देवताओं को स्वर्ग में दिखाते हैं, स्वर्ग है सुख। सुख माना? स्वर्ग माना क्या? सिर्फ सुख, दुख का नाम निशान नहीं। कोई परसेंटेज जहां दुख की न हो वो है स्वर्ग, माना सुख। शंकर को कहां दिखाते हैं? फिर कांटों के जंगल में दिखाते हैं या स्वर्ग में दिखाते हैं? कांटों के जंगल में ही दिखाया। मुरली में भी बाबा कहते हैं कि मैं महलवाणियों में नहीं रहता हूं। मैं कहां रहता हूं? मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, तुम बच्चों को महलवाणियों में रखता हूं। तो स्वर्ग में तुम बच्चों को भेजूंगा, मैं कहां रहूंगा? मैं इस नरक की दुनिया में ही दिखाया जाता है मेरा रूप। मुझे स्वर्ग में नहीं दिखाते हैं, तुम बच्चे जब स्वर्ग में जा देंगे तो मेरे को नहीं बुलावेंगे, मेरे को बुलाते भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं देते कि आ जाओ। क्या वंडरफुल बात हो गई? माना सब देवता स्वार्थी हो गए क्या है? ज्ञानी शंकर तो न वर्षा लेते हैं न वर्षा देते हैं। हाँ, माना एक पाठधारी ऐसा भी है सारी मनुष्य सृष्टि के बीच जिसको कामना नहीं है। मुरलियों में भी आता है, क्या आता है? वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं साधु संत महात्मा सन्यासी कि हम निष्काम कर्म करते हैं। वास्तव में कोई भी निष्काम कर्म कर नहीं सकता। क्यों? निस्वार्थ निष्काम कर्म क्यों नहीं कर सकता है? सबको स्वार्थ और कामना क्यों रहती है? अशोक बाबा को स्वार्थ और कामना नहीं है। हाँ, कि सबको अपना रथ है, शिव बाबा को अपना रथ नहीं है। सबको रथ है तो स्वार्थ होंगे। शिव बाबा जिस रथ में प्रवेश करके पाठ भी बजाता है तो उसमें कैसा पाठ बजाता है? निस्वार्थ। उस रथ के लिए उसे कुछ नहीं लेना है। अगर कुछ करता भी है तो किसके लिए करता है? कौड़ी लेता है और हीरे देता है तो किसी के लिए करता है? है? अपने आनंद के लिए करता है? नहीं। जो बच्चे हैं, जो आसक्त हुए पड़े बच्चे हैं, जिनसे पुरुषार्थ होता ही नहीं लेकिन दिल के सच्चे हैं, सच्चा पोता मिल देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए संग का रंग लगाने के लिए निमित्त बना हुआ वो पार्ट है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो भी आनंद लेने वाला है, वो भी स्वार्थी है, उसको भी कामना है। नहीं, वो सिर्फ एक ही पार्टधारी है। और रंगमंच पर पार्टधारी साकार होगा या निराकार और आकार होगा? पार्टधारी तो साकार ही होता है। अगला वक्त भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है। सदैव भोलों का नाथ, चाणों का नाथ नहीं, छल छिद्र कपट वालों का नाथ नहीं। किसका नाथ? भोलानाथ। क्यों? उसके लिए तो गायन है, असुर हो चाहे देवताएं हो, वो सबका कल्याण करने वाला। कल्याण तो सबका करने वाला है, लेकिन पहले अहंकारियों का कल्याण करेगा या जो निरहंकारी बच्चे निरहंकारी बन के बाप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपना पूरा पोता मिल सच्चा सच्चा देते हैं उनके सामने पहले वो झुकता है? पहले सब कुछ अपना अर्पण किसके सामने करेगा? जो भोले बच्चे भोले भाले, बाप ने कहा और बच्चों ने माना। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है। और कोई भोला होता ही नहीं। कोई कहे शंकर भोला है? नहीं, शंकर अगर भोला होता तो ये गायन क्यों होता शिव शंकर भोले भाले? शिव शंकर शब्द जो बोला जाता है और भोले भाले शब्द बोला जाता है, उसमें पहला टाइटल कौन? शिव के साथ भोला लगा हुआ है और शंकर के साथ भाला लगा हुआ है, तो भोला कहां हुआ? बाला भोला कहां हुआ? वो तो भाला हो गया। माने जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि ये शंकर है, एक ही शरीर में दो पार्टधारी, एक भोक्ता एक अभोक्ता। लेकिन जिनकी बुद्धि में वो शंकर याद रहता है, विषपाई, उसके विष का ही आलोड़न करते रहते हैं बुद्धि से। सागर में कचरा भी भरा हुआ है और सागर में रतन भी भरे हुए हैं, हमको क्या चाहिए? हमको रतन चाहिए। अगर हमने कचड़े का आलोड़न करना शुरू कर दिया तो हम पार पाएंगे क्या? सारी दुनिया का कचरा तो सारा सागर में जाता है, सागर के कचरे का अवगाहन करने से हम हमारी गति क्या होगी? हम तो उसी में डूब जाएंगे। तो शिव बाबा को भोला कहा जाता है, शंकर को भोला नहीं कहेंगे। एक मुरली का शंकर तो है हज्जाम, माथा मोड़ करके हल्का कर देगा, जैसे कहते हैं ना माया माथा मोड़ लेती है, तो शंकर भी क्या करता है? माथा मोड़ लेगा। तो किसको याद करना चाहिए, शंकर को याद करना चाहिए या शिव को याद करना चाहिए? हमारा कल्याण किसमें है? जैसे ब्रह्मा के तन में बोलते थे, बच्चे ब्रह्मा की गोद में जाते थे, बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो, तुम्हारी स्मृति में क्या है, ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो, तुम्हारी स्मृति में क्या है? कोई कहते ब्रह्मा की गोद में आए, फेल हो गए, तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर शिव बाबा की गोद में आए ये बुद्धि में है तो प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसे ही सबको याद नहीं करना है, किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। शंकर को नहीं कहा जाता है भोलानाथ, वह तो विनाश करता है, और शिव बाबा स्थापना कराता है। क्या? शिव बाबा स्थापना कराता है किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, अगला बात, ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं परंतु वो कोई जोड़ी नहीं है, फिर जोड़ी में नाम क्यों बोल देते हैं? ये जोड़ी का नाम क्यों बोला हुआ है ब्रह्मा सरस्वती? हैं? सरस्वती में प्रवेश करते, ब्रह्मा में प्रवेश करते, वो तो ब्रह्मा हुआ, पर सरस्वती को उनके साथ क्यों ऐड कर दिया? शास्त्रों में कहते हैं कि जब ब्रह्मा था उस समय और कोई था ही नहीं, तो उन्होंने तो ग्लानी लिख दी है कि ब्रह्मा को सहयोगिनी शक्ति ही कोई नहीं थी तो अपनी बेटी को ही सहयोगिनी शक्ति बना लिया, वो तो ग्लानी की बात कर दी। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती कोई युगल नहीं है, वो तो ज्ञान के आधार पर जिसने सबसे जास्ती ज्ञान उठाया, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ अपने प्रैक्टिकल जीवन में उठाया, उसके ऊपर ब्रह्मा फिदा हुआ गुणों के ऊपर। बाकी ऐसे नहीं है कि उसको कोई अपने अपनी युगल बनाई लिया, स्त्री बनाई लिया, नहीं, वो कोई जोड़ी नहीं है। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। क्या? जिस समय वाणी बोली जा रही है उस समय शंकर पार्वती थे? नहीं थे, तो जोड़ी होने का सवाल ही नहीं। और भविष्य में भी पार्वती ब्रह्मा कुमारी होगी, प्रजापिता ब्रह्मा की कुमारी होगी या जोड़ी होगी, दुनिया वाले जिस अर्थ में जोड़ी कहते हैं उस संबंध के आधार पर जोड़ी होगी क्या? है? विकारी संबंध के आधार पर जोड़ी होगी क्या? शास्त्र में कहते हैं ना, तो शास्त्र में जो भी बातें हैं वो किसकी लिखी हुई है? भक्तों ने लिखी। भक्त विकारी हैं तो बुद्धि भी उनकी विकारी है, तो वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। वो भी ब्रह्मा कुमारी है और वो भी जनेऊधारी ब्राह्मण है, और जब जोड़ी होगी तो उनको शंकर पार्वती कहेंगे या लक्ष्मी नारायण कहेंगे? हम ब्राह्मणों की भाषा में क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण। अगला भाग, विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब हुई और कैसे हुई, कौन निमित्त बना, क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? आदि में भी जो भी विघटन हुआ यज्ञ के अंदर, उसमें भी निमित्त कोई शंकर था क्या? नागबलों वाला नहीं, कोई ब्राह्मण बच्चे ही निमित्त बने। जब से स्थापना के कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई यज्ञ के आदि में। तो विनाश को प्रज्वलित, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और साथ साथ आप। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उनको संपन्न करना भी, बाप और ब्राह्मण बच्चे वही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले थे, और उनको ही अब उस विनाश ज्वाला को संपन्न रूपी देना है, न कि शंकर को देना है। शंकर ऐसा कोई नागबलों वाला कोई होता ही नहीं है। विष्णु कोई होता है क्या? न विष्णु होता है न शंकर होता है, होते कौन है? ब्राह्मण बच्चे होते हैं या कोई शंकर और विष्णु होते हैं, जैसा रूप शास्त्र में दिखाई दिया चित्र में। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। आदि में ही यज्ञ के अंदर, तो इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया, ये महावाक्य में नहीं है, छाप दिया है। आदि में ही यज्ञ के अंदर दो प्रकार के ब्राह्मण उत्पन्न हो गए, एक विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे दैवी संस्कारों वाले ब्राह्मण तथा दूसरे रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी स्वभाव के संस्कारों वाले ब्राह्मण। इस बात से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। माना ये साबित करने के लिए कि शंकर जो ब्राह्मण है वो कैसा ब्राह्मण? आसुरी संस्कारों वाला ब्राह्मण। अगला वाक्य, जब अंत में एक जुट जुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे, ये भी मुरली का पॉइंट तो नहीं है, संजीवनी पेज 51 लिखा है, जब अंत में एक जुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे तब तो औघड़ वरदानी शंकर का पार्ट ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो सहस्त्र भुजी विराट रूप विष्णु देखने में आवेगा। ये गुप्त साधारण पतिरी पार्ट गुम हो जाएगा। गुम हो जाने का अर्थ क्या लगाया? कि दुनिया में रहेगा ही नहीं। बाबा का अर्थ है कि जो अभी साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो साकार रूपधारी लोप हो जाएगा, और निराकारी स्टेज वाला जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई गई निराली, ऐसा रूप देखने में आवेगा, तुरिया रूप देखने में आवेगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। अगले वाक्य में लिखा है, शंकर का पार्ट प्रैक्टिकल तो बजना है, शंकर का पार्ट प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियां ही श्रृंगार का पार्ट बजाती हैं, शंकर को नहीं बजाना है, शक्तियों को श्रृंगारी रूप धारण करना है। लिखते भी जा रहे हैं छपाते भी जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि आखिर ये क्यों लिखा है, कैसे संगारी रूप धारण करना है। अगला वाक्य, एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है, मुरली का वाक्य बोला गया है शंकराचार्यों के लिए, सन्यासियों के लिए जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है, तुम फिर अपन को भगवान कहते हो। किसके लिए बोला है? सन्यासियों के लिए जो शिवो हम बन के बैठ जाते हैं। क्या तुम पतित पावन हो? निकलो यहां से बाहर, ऐसी झूठी बातें यहां मत करो। कौन करता है? नहीं, छपाया है उसने, दृष्टि से नहीं छपाया उसने छपाया है कि एडवांस पार्टी का जो हेड है वो अपने को पतित पावन अपने को कहता है कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। लेकिन क्या वो कहता है? है? कहता है? कहता तो नहीं है। वो कहता है कि मेरे में शिव प्रवेश करता है? वो कहता है या तुम लिख करके देते हो? महाराज जिसने छपी कहता नहीं, उससे पूछो। अगर वो पतित पावन है तो उससे पूछो तुम पतित हो या पावन हो, तो क्या जवाब देगा? वो क्या जवाब देगा? वो अपने को पतित कहेगा कि पावन कहेगा? है? तो पतित ही कहता है। वो तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई मुरलियों में प्रूफ नहीं है, वो क्या कैस्टों में कोई प्रूफ नहीं है, कोई लेटर्स में कोई प्रूफ नहीं है, जो भी लिटरेचर छपाया उसमें कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपने को शिव कहता है या पतित पावन कहता है। मान लिया गया, ऐसा मान करके ये वाक्य जो है जो शंकराचार्यों सन्यासियों जो शिवो हम बन करके बैठते हैं उनके लिए लागू होने की बात कहां लागू कर दे? जहां कोई प्रूफ ही नहीं उनको मिलेगा वहां लागू कर दे। दो तीन वाक्य और हैं इसमें। सबसे बड़ा पाप है एक दो को भूख पिलाना, पतित बनाना। सबसे बड़ा पाप है एक दो को बिख पिलाना। बिख किसे कहा जाता है? है? बिष किसे कहा जाता है? है? विष है? पराई स्त्री को सेवन करना विष कहा जाता है। किसको विष कहा जाता है? पराई स्त्री को या पर पुरुष का सेवन करना दुनिया में उसको विष कहते हैं। इसके अलावा भी जो भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म होता है और निस्तेज स्थिति बन जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, वो भी विष पिलाना है। लेकिन यदि अमोघ वीर्य है तो उस स्टेज को विष पिलाना कहेंगे? मूत पीना और पिलाना कहेंगे? शंकर को किस रूप में याद किया जाता है? अमोघ वीर्य के रूप में याद किया जाता है। तो जो अमोघ वीर्य के रूप में याद किया जाता है उसको विष पिलाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? स्थिति ऐसी बनी हुई है, वो सामान्य स्थिति औरों की नहीं हो सकती, इसलिए उस पार्ट भारी के रूप में उसको कहा जाता है एवर प्योर। वो एवर प्योर